اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، کیا ہے تیری حقیقت جو گمنام ہے، تجھ پہ خود کو چھپانے کا الزام ہے، تونے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، تونے دنیا بنائی کیوں مقصد بتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، روحیں اس میں بسائی کیوں مطلب جتا، تیرے جلبوں سے روشن زمین آسمان، کیوں کسی کو نظر تو نہ آتا یہاں، تیری پردہ نشینی کا انجام ہے، ڈھونڈتا آج بھی تجھ کو انسان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، دھرم مذہب میں ہے تیرے چرچے بیاں، شان میں تیری لکھتے ہیں پرچے وہاں، سب کے بھگوان اپنے ہی اپنے جہاں، نہ سمجھ تجھ کو سمجھے نہ لڑتے یہاں، تو سمجھدار ہو کے بھی انجان ہے، ہے بدی کرتے انسان تو بدنام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، تو نے جنت بنانے کی محنت بھی کی، پھر یہ دوزخ کو لانے کی زحمت کیوں کی، کھیل کیسا گجب تھا گزب ڈھا دیا، نیکیوں کو بدی سے ملا جو دیا، لینا کب تک تمہیں سب کا امتحان ہے، اب سبھی کے دلوں میں یہ ارمان ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، تو ہے رہتا کہاں تیرا کیا کام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا نام ہے، اے خدا تو بتا تیرا کیا کام ہے، کیا نام ہے، ہاں کیا کام ہے، اے خدا
شا सभी ने बहुत सुंदर गीत सुना, जिस गीत में गायक खुदा से बहुत सारे सवाल कर रहा है। तो ये जो सवाल वो गायक इस गीत में खुदा से कर रहा है, क्या ये सवाल सिर्फ उस गायक के हैं या हम आप सबके भी हैं? सबके हैं? पक्का? पक्का? तो खुदा, तेरा नाम क्या है? तेरा काम क्या है? तू रहता कहाँ है? क्यों तू अपने आप को गुमनाम रखता है, छुपा के रखता है? जन्नत भी बनाता है फिर दोजख भी लाता है। ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए भगवान को, खुदा को। और आप कह रहे हैं कि ये वाले सवाल हमारे भी है खुदा से, ठीक है ना? पक्का है ना इस बात में कि आपके भी सवाल है? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि हम सभी भगवान को याद करते हैं, खुदा को याद करते हैं? करते हैं सभी याद? करते हैं। यहाँ पे कुछ बीके भाई बहने बैठे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने आप को इस समय बीके नहीं समझे, और ये समझे जब हम बीके नहीं बने थे उसकी पहली वाली लाइफ को समझ कर चले, ठीक है? तो हम सब खुदा को याद करते थे, बीके बनने के बाद तो एक नई समझ मिली, लेकिन पहले जब समझ नहीं थी, हम सब अपने अपने रीति से खुदा को याद कर रहे थे। और जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते थे तो पूछते थे, आप भगवान को बिलीव करते हो? हाँ, तो जो करता है वो हाँ कहता है और जो कहता है ना करता है। फिर अगला प्रश्न होता था हमारा, आपके भगवान कौन से हैं? पूछते हैं ना कि आपके भगवान कौन से हैं? इसका मतलब सबके अपने अपने भगवान हैं। गीत में भी यही कहा ना, सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन मैं अब आपसे और एक प्रश्न पूछती हूँ। हिंदू जिसे ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, मुसलमान जिसे खुदा कहता है, अल्लाह कहता है, क्रिश्चियन जिसे गॉड कहता है, वो गॉड, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा एक है या अलग अलग है? एक ही है ना? तो देखो, हमारी दो मान्यताएं जो दोनों एक दूसरे को खारिज कर रही हैं। एक तरफ हम ये स्वीकार कर रहे हैं भगवान एक होता है, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे से पूछ रहे हैं, आपके भगवान कौन से हैं? हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, चलो इसका भी आज क्लारिफिकेशन हो जाएगा। तो जैसे कि भाई साहब ने कहा, तो ये बात तो श्योर है कि वो एक है, परंतु अगर मैं एक हूं, हाँ, मेरे नाम से इंद्रा एक ही है, दूसरी कोई इंद्रा हो सकती है, परंतु वो दूसरी वाली इंद्रा होगी ना, मेरी वाली, मैं वाली तो इंद्रा नहीं होगी ना। लेकिन अगर खुदा एक है तो वो भी एक ही परिचय वाला होना चाहिए ना। अगर दूसरा वाला भी है कि हम कहते हैं कि हम उसको अलग अलग नाम रूप से पर याद उसी को करते हैं, परंतु फिर अलग अलग नाम रूप हो गए तो परिचय भी तो चेंज हो गया ना। तो जब परिचय चेंज हो गया तो व्यक्ति भी तो चेंज हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए जिस खुदा को हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो एक है, उसका जो असली एक परिचय है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मैं खुदा के नाम पर चाहे जिसको भी याद करूं समझो, पर जो भी मेरे सामने है उसकी अपनी लिमिटेशन है ना, फिर भी तो वहां से मुझे प्राप्ति भी उतनी ही लिमिटेड होगी। भले मैं कहूं कि खुदा के नाम पर मैं उसको याद कर रही हूं, जैसे एक बच्चा कहे मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही भगवान है, बहुत अच्छी भावना है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जो प्राप्तियां भगवान से होती है वो उस माँ बाप से हो सकेगी? हाँ, जीवन में कई क्षण ऐसे आएंगे कि जिस माँ बाप को मैं कह रही हूँ वो मेरे लिए भगवान नहीं, भगवान से भी बढ़कर है। सिर्फ भगवान भी नहीं कह रहे हम, भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन जीवन में कभी कुछ प्रसंग आएंगे ऐसे, बेटा उस भगवान को याद करो, जबकि हमने उनको दर्जा दे दिया भगवान को। समझ में आ रही है कि हम जिसको भगवान मान रहे हैं भावना बहुत अच्छी है, पर उनकी अपनी लिमिटेशंस है, और इसलिए जो सचमुच का भगवान है, जो लिमिटेशन से परे है, उसका सत्य परिचय होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि मुसीबत के समय में जब माँ ने कह भी दिया कि बेटा उस भगवान को याद करो, लेकिन अब उसमें जल्दी से, क्योंकि उसकी क्लैरिटी नहीं है, उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं जोड़ा था, तो मन लगाने जाऊंगा भी एकाग्र नहीं हो रहा है। और जब सिर्फ एकाग्र नहीं हो रहा है, मन में कुछ कुछ डाउट भी हो रहे हैं, अच्छा इसको याद करने से हो जाएगा सचमुच में, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है ना, तो डाउट भी उत्पन्न होंगे, और वो डाउट ही आपको एकाग्र नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। वो विजिबल नहीं है, मेरी परेशानी में माँ कह रही उसको याद करो जो विजिबल भी नहीं है, बस ऐसे इशारा करती है उस एक को याद करो, उस एक को याद करो। अरे भाई कौन है एक, वो दिखता तक नहीं मुझे, और सचमुच मेरी मुसीबत में वो कोई रोल भी प्ले करने वाला है या नहीं मुझे तो पता नहीं, बस मेरी माँ कह रही है। तो अंदर में अचलता नहीं है, अडोलता नहीं है, तो एकाग्र कहाँ से होंगे? और जब तक एकाग्र नहीं होंगे मानो उससे कनेक्ट नहीं होंगे, और जब तक कनेक्ट नहीं होंगे वहां से जो मदद मिलनी भी चाहिए थी मिलेगी तो कैसे मिलेगी। और इसलिए इन एडवांस हमें उसका सत्य परिचय मालूम होना चाहिए, इन एडवांस उसके साथ हमारे संबंध स्थापित होने चाहिए, तब जाकर मुसीबत के समय में वो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा, वो स्वयं मुझे मदद करेगा। नहीं, हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है ना, तो ऐसे अगर फैमिली डॉक्टर नहीं है और आप किसी डॉक्टर को फोन करो आपका फोन उठाएगा, लेकिन अगर आपका फैमिली डॉक्टर है वो क्या कहेगा, आप आधी रात में भी मुझे फोन कर सकते हो, और आप करते भी और उठाता भी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कहा, क्या कहा आपने, फैमिली डॉक्टर कहा तो मतलब संबंध स्थापित किए हुए हैं। तो जब संबंध स्थापित किए हुए होते हैं तो वो फिर सदा हमारे साथ होते हैं। तो इसलिए भगवान का परिचय हमें पहले से ही पता होना चाहिए, न कि मुसीबत के समय। पहले से ही उसके साथ हमारे संबंध स्थापित होने चाहिए। तो क्या है उसका सत्य परिचय, वो हम जानेंगे अभी। तो कल आपको आत्मा का परिचय मिल गया, और आत्मा का परिचय माना आत्मा का रूप, आत्मा का नाम, आत्मा के क्वालिफिकेशंस या गुण या हुनर, आत्मा का प्रोफेशन और आत्मा की एड्रेस। परिचय में ये पांच बातें आती हैं। घर में एक बच्चे का जन्म होता है, हम अपने नियर डियर वंस को न्यूज देते हैं, भाई एक खुशखबरी है, घर में बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन वो बच्चे का जन्म से कुछ मास पहले की खबरी क्या होती है, बच्चा गर्भ में पल रहा है। उससे भी कुछ मास पहले की खबर क्या होती है, जो सबको नहीं पता होती है, सिर्फ इन मीन तीन को पता होती है, और वो खबर होती है गर्भ ठहरा है ना, क्योंकि उस समय वो बच्चा है भी नहीं। वो तो जो गर्भ में स्त्री और पुरुष के कण जाके मिले हैं, पिंड तैयार हुआ है, अब वो पिंड मल्टी, बहुत जिसको कहते हैं बहुविभाजन होते 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 एक शिशु आकृति, मानव शिशु की आकृति प्राप्त करता है, और माँ जिसने उसको गर्भ में धारण किया हुआ है उसकी हलचल को अनुभव करना शुरू करती है, तब कहते हैं बच्चा गर्भ में पल रहा है। पहले तो गर्भ ठहरा है, माँ को ही नहीं पता है क्या है अंदर, और इसलिए क्या कहते हैं गर्भ ठहरा है। लेकिन जब वो शिशु आकृति के रूप में परिवर्तन हो गया और उसमें वो चैतन्य शक्ति आत्मा ने प्रवेश किया, तब हलचल आरंभ हुई और कहा बच्चा पल रहा है, और कुछ और उसमें उसका विकास हुआ और बाहर आया। और आते ही हमने खबर दे दी घर में बच्चे का जन्म हुआ है। जिसको भी खबर दी ना तो कहता है बच्चा किस पे गया है, माँ पे गया है, बाप पे गया है, कैसा रंग है उसका, सबसे पहले रूप और रंग पूछा जाता है। तो परिचय पहले वहां से शुरू होता है, रूप और रंग से। बाकी के परिचय बाद में एडिशन होंगे, सबसे पहला परिचय होता है रूप और रंग का और लिंग का। कौन सा बच्चा, बच्ची, लड़का या लड़की, ये परिचय में सबसे पहली बात आती है। बाद में तो नाम रखा जाएगा ना। अच्छा, जब व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो भी हम नियर डियर वंस को समाचार देते हैं, भाई फलाने की डेथ हो गई है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार फला फला जगह पर, फला फला समय पर, फला फला तारीख को है। फिर दूसरा समाचार, जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए शोक सभा का आयोजन फला फला समय पर, फला फला डेट पर, फला फला स्थान पर। दो कर्तव्य निभाए जा रहे हैं, एक डेड बॉडी के प्रति, और वो आत्मा जिसमें से, जो इस शरीर से निकलने के कारण वो शरीर डेड बॉडी बना है, आत्मा के प्रति शोक सभा उसी के लिए है। अंतिम संस्कार डेड बॉडी का था। तो जो मैंने अभी जन्म के प्रसंग की बात कही, वहां से भी बहुत बड़ा संदेश मिलता है, और इस मृत्यु के प्रसंग से भी बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि जीवन तो जन्म और मृत्यु के बीच चलता है। और ये जीवन आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पर जीवन भर इसको दोनों को अलग अलग कभी नहीं देखते हैं। वो तो ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं तो समझ प्राप्त होती है। कल प्राप्त हुई ना आत्मा की समझ, वरना तो हु आर यू में हम नाम इसका बता रहे थे, रूप इसका बता रहे थे, क्वालिफिकेशन इसने क्या अर्जित की है वो बता रहे थे, क्या प्रोफेशन में है इसका बता रहे थे, इसकी एड्रेस बता रहे थे, आत्मा का नहीं बता रहे थे। हम पूछ रहे थे हु आर यू या हु एम आई, पर आंसर आ रहा था वो आई जिस बॉडी में उसका। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहां आए तो आपको पता चला हु आर यू। अब उसका आंसर क्लियर है ना सबके पास कि ये रूप नहीं है मेरा। कौन सा रूप है? ज्योति स्वरूप। और नाम तो आत्मा बोला ही। गुण कौन से है? तो सात क्वालिटीज बताई। प्रोफेशन क्या है तो बताया, एक्टर हैं हम। और एड्रेस क्या है? तो ये प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस जहां से आए हैं। ये पांच बातें परिचय में होती है, वो आत्मा की आपको पता चल गई। अब यही पांच बातें हम आज परमात्मा की जानेंगे। जहां तक आत्मा की बात है, हम इंडिविजुअल हैं। कहा ना इंद्रा एक है, तो इंद्रा का परिचय एक है। लेकिन जहां तक परमात्मा की बात है तो सभी ने अपने अपने परमात्मा बनाए हैं, और इसलिए पहले वो एक है वो भी समझ लेना पड़ेगा। तो क्या क्या मान्यताएं लोग रखते हैं उस परमात्मा के प्रति, पहले हम वो देख लें। एक मान्यता है प्रकृति ही परमात्मा है। दूसरी मान्यता है आत्मा ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा, ऐसे कहते हैं ना लोग। तीसरी मान्यता है जितने भी साधु संत महांत हैं ये परमात्मा के ही रूप हैं। फिर कहते हैं जितने भी धर्म पिताएं हैं ये सब परमात्मा ही हैं। ये जितने भी देवी देवता हैं, जैसे आपने कहा ना, हम भले ही किसी को याद करते हैं पर उस एक के नाम पर ही याद करते हैं। तो जितने भी देवी देवताएं हैं जिनको 33 करोड़ बताए गए हैं वो सब परमात्मा के ही रूप है। और कोई तो कहता है परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, नाम रूप से न्यारा है। और कोई तो कहता है परमात्मा कोई होता ही नहीं है। अब उस जब एक तरफ स्वीकार कर रहे हैं वो एक है और एक तरफ इतनी सारी मान्यताएं, अगर वो एक है तो इनमें से कोई एक ही उसके लिए लागू होनी चाहिए, सभी तो नहीं होनी चाहिए ना। तो क्या एक लागू होनी चाहिए वो हम समझेंगे कि परमात्मा क्या हस्ती होनी चाहिए जिसको परमात्मा कहे। एक डॉक्टर को भी डॉक्टर क्यों कहेंगे हम? डॉक्टरी नॉलेज है उसके पास, शरीर का ज्ञान है, शरीर को होने वाले रोगों का ज्ञान है, शरीर के अंगों का ज्ञान, शरीर में होने वाले रोगों का ज्ञान, फिर उन रोगों से निवारण के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, जो दवाइयां होती है, उनका ज्ञान अगर है तो कहेंगे डॉक्टर है। नहीं तो ऐसे ही मैं कह दूं ये डॉक्टर है आप मान लेंगे क्या? नहीं, कुछ कसौटी होती है ना कि अगर मैं इसको डॉक्टर कहती हूँ माने इसके पास ये बातें होना जरूरी है। अब ऐसे ही जिसको हम परमात्मा कहेंगे उसकी भी तो कोई कसौटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो क्या कसौटी है उसको हम इस परमात्मा शब्द से ही फाइंड आउट करेंगे, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमात्मा शब्द जिसको हम याद करते, जिसके नाम पे भले हम आस्था के आधार से किसी को भी याद कर रहे थे, पर आपने स्वीकार करते तो हम याद उसको परमात्मा को ही है। तो इस परमात्मा शब्द से ही उसकी क्या कसौटी होनी चाहिए वो हम पता करेंगे। परमात्मा शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, परम प्लस आत्मा। इन दोनों को जोड़ा तो संधि बनी और फिर हमने इसका विच्छेद किया तो दो शब्द मिल गए, परम प्लस आत्मा। मतलब वो भी एक आत्मा है। संधि विच्छेद करने से पता चलता है कि वो भी एक आत्मा है। परम तो उसके आत्मा के सामने एक विशेषण है कि वो आत्मा है, पर एक विशेष प्रकार की आत्मा है। तो क्या विशेष प्रकार की है? तो कहा वो परम है। तब मुझे समझना पड़ेगा कि परम माना क्या होता है। आत्मा तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, कल समझ चुके हैं ना पूरा। अब आज उसके सामने विशेषण लग गया कि वो परम है, तो अब बोलिए परम माने क्या होता है? क्या होता है परम माने? दी अल्टीमेट, अर्थात उसके आगे, उससे ऊंचा कोई नहीं, जिसको ही दूसरे शब्दों में कहेंगे सर्वोच्च। सर्वोच्च कहेंगे उसी को। और इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिक्स में। कंसीडर करते हैं कोई इक्वेशन, फिर सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, क्योंकि भाई सर्वोच्च तो बोल दिया पर मुझे सर्वोच्च का भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ सर्वोच्च का मतलब? जिससे ऊंचा कोई नहीं, जिसके आगे कोई नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि उसका कोई माता पिता नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आज हूं, मैं पढ़ लिख के कितनी भी ऊंची पोस्ट पे चली जाऊं, फिर भी मेरे माता पिता भल अनपढ़ भी हैं, तो क्या मैं उनसे भी ऊंची हो जाऊंगी पढ़ लिख के? वो सदा ऊंचे रहेंगे ना। मेरा स्कूल टीचर जिसने मुझे ABCD सिखाई, जिसके आधार से ही मैं आगे बढ़ी, वो आज भी प्राइमरी में पढ़ा रहा है, आज भी। लेकिन मैं इतनी ऊंची बनने के बाद भी मेरे लिए वो प्राइमरी टीचर, वो आज भी ऊंचा रहेगा या आज मेरे से नीचा हो जाएगा? आज भी ऊंचा रहेगा। वो गुरु जिसने मुझे ब्लेसिंग्स दी, वरदान दिए किसी कार्य में, किसी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए, कि जिसके ब्लेसिंग से, जिसके आशीर्वाद से मैं फल रहा हूं, फूल रहा हूं, मेरे से आयु में भी कम होगा, दुनियावी नॉलेज में भी कम होगा, पर कुछ आध्यात्मिकता के बल से, उस आध्यात्मिक शक्ति है उसके पास, उसके आधार से जो जब मेरे लिए वो दुआएं करता है, आशीर्वाद देता है, वरदान देता है, मेरे कार्य सही हो जाते हैं, तो वो सदा मेरे लिए ऊंचा रहेगा या नहीं? वो रक्षक जो मुसीबत के समय मेरे लिए रक्षा के लिए आ पहुंचा, कहते हैं डूब रहा था, ट्रेन आ रही थी, कोई वहां पर बच्चा खड़ा था, किसी ने देखा और अपनी जान रिस्क पे रखकर उसकी जान बचाने गया और उसके शौर्य ने सफलता प्राप्त की, वो उसको हमेशा याद रखेगा, मेरा रक्षक है, ये नहीं होता तो आज मेरा जीवन नहीं होता। तो सदा ही हमारे माता पिता, हमारा शिक्षक, हमारा गुरु, मार्गदर्शन देने वाला हमारा रक्षक। हम चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाए, लेकिन वो हमारे से सदा ऊंचे रहेंगे। तो जब हम परमात्मा को कह रहे हैं सर्वोच्च, इसका मतलब उसका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो माता पिता ऊंचे हो जाएंगे ना, उसका कोई शिक्षक नहीं होगा, अगर होगा तो वो शिक्षक ऊंचा हो जाएगा, उसका कोई गुरु नहीं होगा, अगर होगा तो वो ऊंचा हो जाएगा, उसका कोई रक्षक नहीं होगा, अगर होगा तो वो ऊंचा हो जाएगा, तो वो सर्वोच्च वाली बात तो फेल हो गई। क्लियर हुआ? तो सर्वोच्च को सिंप्लीफाई क्या किया हमने, कि परमात्मा माना वो जिसका कोई मात पिता नहीं लेकिन वो स्वयं सर्व का मात पिता। परमात्मा माना वो जिसका कोई शिक्षक नहीं लेकिन वो सारी आत्माओं का शिक्षक। परमात्मा माना वो जिसका कोई गुरु नहीं लेकिन वो सर्व आत्माओं का सदगुरु। परमात्मा माना वो जिसका कोई रक्षक नहीं लेकिन वो सर्व आत्माओं का रक्षक। और इसको और सिंप्लीफाई करें, परमात्मा माना वो जो कभी मां के गर्भ में नहीं जाएगा, यही हुआ ना, वो मां के गर्भ में कभी नहीं जाएगा। और जो मां के गर्भ में नहीं जाएगा उसको ही तो अजन्मा कहेंगे। तो उस परमात्मा की जिसके लिए आपने कहा हम किसी को भी याद कर रहे हैं पर कर तो उसको याद रहे हैं, तो किसको याद कर रहे हैं हम असल में, अजन्मा को याद कर रहे हैं। और चूंकि वो जन्म नहीं लेता, तो पहले हमने जब कहा कि घर में जब बच्चे का जन्म होता है खबर फैला दी जाती है तो सबसे पहले पूछा जाता है किस पर गया है, मतलब रूप ही पूछ रहे ना। अब ये तो माँ के गर्भ में ही नहीं जाता तो बच्चे के रूप में जन्म ही नहीं लेता, तो इसका रूप इसके तो माँ बाप ही नहीं, तो माँ पे गया बाप पे गया। तो समझ में आ रहा है, ऐसा वाला हम जो बच्चे जन्म होने के बाद रूप रंग की बात कर रहे थे वो बॉडी की बात कर रहे थे, लेकिन आत्मा का लेसन में बॉडी से हटकर मिला ना। तो जब कहा वो अजन्मा है मतलब ऐसा वाला रूप नहीं है, पांच तत्वों का शरीर नहीं है उसके पास, परंतु रूप तो है ना, आत्मा है ना, वो आत्मा है ना, आत्मा का रूप क्या पता चला, ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो न सिर्फ हम रूप पूछते हैं रंग भी पूछ लेते हैं, भाई उसका रंग कैसा है, काला है गोरा है सांवरा है। तो हम आत्माओं का जो हमें रूप पता चला, तो कई बार भाई बहने कहते हैं बहन जी वो ज्योति स्वरूप दिखता नहीं है क्लियर, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, क्योंकि हमारी ज्योति तो उलझा गई है ना, क्योंकि बैटरी कब से यूज हो रही है, दीवा कब से जल रहा है। बस इस दीवे की विशेषता ये है कि पूरा उसका घृत खत्म नहीं होता और इसलिए वो धक्का मार के चलता रहता है, तो उसकी ज्योति कैसी रहेगी, एकदम क्लीन नहीं हो सकती है ना। उसमें थोड़ा देखो जब धुएं दीपक में घृत कम हो जाए तो ज्योति के साथ साथ धुआं भी होता है ना। अब ये परमात्मा जो जन्म नहीं ले रहा है तो उसकी ज्योति कैसी होगी, सदा कायम एक रस होगी या नहीं होगी, उजली उजली होगी नहीं होगी। तो पता चला परमात्मा का रूप और रंग। फिर पूछते हैं बच्चा है या बच्ची है, पूछते हैं, पूछते कि नहीं पूछते, बच्चा है या बच्ची है। और बच्चा है या बच्ची है मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लिंग माना चिन्ह। तो बच्चे का कौन सा चिन्ह है, स्त्री वाला है या पुरुष वाला, उसी से तो बताते हैं ना लड़का हुआ या लड़की। अब परमात्मा चूंकि ऐसा वाला शरीर लेता ही नहीं है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की तो बात ही नहीं उठ रही है, तो फिर क्या है उसका लिंग? तो क्या बोलते हैं? शिवलिंग बोलते? नहीं बोलते उस परमात्मा के लिए शिवलिंग बोलते ना? तो क्या हुआ शिवलिंग का मतलब? शिवलिंग का मतलब क्या हुआ? ये चिन्ह है उस शिव का, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो नाम आ गया, नाम भी आ गया, तो आपको रूप पता चल गया परमात्मा का, आपको रंग पता चल गया परमात्मा का, आपको लिंग पता चल गया परमात्मा का, आपको नाम भी पता चल गया परमात्मा का। तो जन्मते ही तीन बातें, रूप रंग और लिंग, और फिर कुछ न कुछ नाम देना शुरू कर देते हैं ना। तो नाम आ गया, आ गया। सिर्फ एक बात, परमात्मा शब्द को सामने रखा, उसमें से परम शब्द को समझा। है तो वो भी एक आत्मा, परंतु उसकी विशेषता है वो परम है। उस परम को सिर्फ सिंप्लीफाई किया हमने, और कहीं शास्त्रों में नहीं घुसे हम, सिर्फ परम शब्द को सिंप्लीफाई किया और इतना परिचय मिल गया। और मन को जचता है या नहीं जचता है? जचता है नहीं परिचय कि नहीं जचता है? कोई थोपा जा रहा है? नहीं, ये असलियत बताई जा रही है। सर्वोच्च, सर्वोच्च शब्द से ये सब निकल के आ गया। तो सर्वोच्च माना जैसे कहा वो जन्म नहीं लेगा तो मृत्यु भी नहीं होगी, मतलब जन्म नहीं लेगा माना देह नहीं होगी। तो आज हम आत्माओं को जो देह के बंधन है, फिर देह के देह है तो देह के संबंध भी है, तो देह के संबंधों के भी बंधन है। देह है तो कर्म कर रहे हैं देह के रीति से, और फिर कर्मों के फल आ रहे हैं, तो कर्मों के बंधन में भी हम हैं, कर्म फल के बंधन में भी हम हैं, परिस्थितियों के प्रभाव में भी हम आ जाते हैं। तो हम बंधन में हैं, हम प्रभाव में हैं, लेकिन चूंकि वो पंच तत्वों वाला शरीर ही नहीं लेता, तो न उसके पास कोई बंधन है, न कोई प्रभाव में आने वाला है वो, तो वो बंधन मुक्त है, प्रभाव मुक्त है। और हम आत्माएं जो बंधन में आ गई हैं, जो प्रभाव में आ गई हैं, और उसमें अपने आप को जैसे कैदी अनुभव कर रहे हैं, तो उसको पुकारते हैं ओ मुक्ति दाता, हमें इन सर्व बंधनों से मुक्त कर दो। क्योंकि जो स्वयं मुक्त है वही तो मुक्त कर सकता है, जो स्वयं बंधन में है वो कहां से मुझे बंधनों से छुड़ा सकता? मैं भी रस्सी से बंधी, आप भी रस्सी से बंधे, आप मुझे मेरी रस्सी खोल सकते हो, लेकिन अगर आप रस्सी से मुक्त है तब मैं आपको कहूं कि मेरी रस्सी खोलो, तो आप खोल सकते हैं। लेकिन हर आत्माएं जितनी भी देहधारी है, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा, देह है ना, और जिसने भी देह धारण की माना वो बंधन में है, तो हमको कैसे छुड़ा सकेंगे वो? तो मुक्ति दाता कह के हम उसे पुकारते हैं। तो अजन्मा है, तो अकर्ता है, तो अभोक्ता है, और फिर मुक्ति दाता है। क्लियर हुई बात? अजन्मा, सर्वोच्च से कितनी बातें निकल कर आ गई। अब आते हैं, आत्मा जन्म लेती है तो आत्मा रूपी दीपक कहो, आत्मा रूपी बैटरी कहो, अपने प्रकाश को या अपने चार्ज को धीरे धीरे गंवाता है, माना उसमें परिवर्तन आ रहा है, कि जो पहले फुल चार्ज बैटरी थी वो डिस्चार्ज होते होते अबाउट टू डिस्चार्ज वाली स्थिति पर आई है। क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी की एक विशेषता है, वो जीरो पे कभी नहीं जाती है, इसीलिए का धक्का मार गाड़ी चल रही है सबकी अगर जीरो पे आती तो फ्लैट हो गए होते, पर वो कभी जीरो पे जाती ही नहीं है। और इसलिए जैसे वो दीवा अगर बुझे नहीं तो नाम मात्र रोशनी सारा धुआं। वही कंडीशन पे है आज मानवता। नाम मात्र के लिए अच्छी भावनाएं हैं, सामने से थोड़ा प्यार से भी बोल देंगे, लेकिन बोलते बोलते भी अंदर कुछ निगेटिव चल रहा होगा। इतना है हमारे पास, लेकिन परमात्मा चूंकि जन्म ही नहीं लेता, उसकी ज्योति में उसकी बैटरी में परिवर्तन आएगा कभी, तभी तो कहा ना उसका रूप क्या है, सदा उजला है। तो अपरिवर्तनशील कहेंगे ना उसको, वो अपरिवर्तनशील है। अच्छा एक बात बताओ कि वो जन्म क्यों नहीं ले रहा है, जन्म क्यों नहीं ले रहा है? देखो बंधन में आ जाएगा। और एक बात कि जैसे मोबाइल है, जिसने भी इसको इन्वेंट किया, दिन ब दिन इसमें फैसिलिटीज बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, यहां तक कि बैटरी बैकअप भी ज्यादा हो ऐसी बैटरियां भी क्रिएट, क्योंकि क्या होता है अच्छी सी एक फैसिलिटी हमको दे दी उसने, फिर हम कभी कभी चार्जिंग करना भूल जाते, फिर ऐसे टाइम पे हमें जरूरत होती है उस समय वो डिस्चार्ज हुआ पड़ता। ये भी क्या मोबाइल है, जब मुझे काम था उसी समय डिस्चार्ज पड़ा है। तो हमने सोचा बैटरी बैकअप जिसका बहुत हो ना वो वाली, लेकिन वो भी बैकअप जीरो पे आ गया तो क्यों नहीं कंपनी वालों ने एक ऐसी बैटरी कहे पावर हाउस डाल दिया उसके अंदर, क्यों नहीं डाला? उसके अंदर पावर हाउस डाल दिया होते ना, क्यों रोज रोज का झंझट की चार्ज करो ज्यादा बैटरी बैकअप, पावर हाउस डाल दो उसको। पावर हाउस नहीं डाला जा सकता है, बस्ट आउट हो जाएगा। यहां तक कि नहीं कुछ हीटर होते हैं, कुछ बोलते इधर नहीं लगाना तो लग, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि इसको ज्यादा चाहिए। समझ में आ रही है बात? कैपेसिटी होनी चाहिए उसको भी होल्ड करने के लिए। तो परमात्मा जन्म नहीं लेता है मानव, इसीलिए बंधनों से मुक्त है। पर क्यों नहीं जन्म ले रहा है? क्योंकि वो अपरिमित है, वो अपार है, वो अनंत है, वो बेहद है, वो अनलिमिटेड है। वो लिमिटेड में आएगा कैसे? बस्ट आउट हो जाएगी मां के गर्भ में जाएगा तो गर्भ ही बस्ट आउट हो जाएगा। इसलिए कई बार देखो बच्चा फिजिकली भी, ये तो आत्मा की बात चल रही है स्पिरिचुअल एनर्जी की, फिजिकली भी वेट बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं, अंदर बच्चे का वेट बढ़ रहा है जरूरत से ज्यादा, मां को खतरा है। बोलते नहीं बोलते, कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, विस्फोट एक्सप्लोजन। तो परमात्मा जन्म नहीं लेता है उसका एक कारण है वो अपरिमित है, अनंत है। अनंत को कैसे बांधोगे? तभी कहा ना क्यों नहीं पावर हाउस डाला। अरे भाई पावर हाउस होता ही दूर है, शहर में थोड़ी रखा जाता है पावर हाउस। उस पावर हाउस से तो सबको मिलना है, तुम्हारे एक थोड़ी इसमें डालेंगे, एक में डालेंगे तो उसको पावर हाउस नहीं बोला जाता है, उसको पावर बैंक बोला जाता है। समझ में आ रही बात, पावर बैंक और पावर हाउस में अंतर। हाँ तो पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ता है ना, आखिर पावर हाउस ही बड़ा है ना। वही तो कह रही है, तो आखिर तो पावर हाउस की मदद ही लेनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन पावर हाउस को किसी से लेना नहीं पड़ता, वो जनरेट करता रहता है, जनरेट करता रहता है और वहां से सप्लाई होता रहता है सबको। तो परमात्मा माना क्या? तो हम निकाल रहे थे शुरू से, तो जैसे कहा सर्वोच्च निकला, वहां से हमने अजन्मा समझा, अजन्मा से भी कई बातें समझ ली, फिर अपरिवर्तनशील समझ लिया और अपरिवर्तन, जैसे कहा ना अजन्मा से हमने कहा मुक्ति दाता हमें भी मुक्ति दे दो। अब अपरिवर्तनशील से क्या निकल के आता है उसका विशेषता कि वो सदा ही, उसका क्या नाम है जैसे हम मुक्ति दाता कहा उधर कहते ही, और एक नाम बता दो स्वयंभू। अजन्मा है मना सब कुछ स्वयं कर लेगा ना वो स्वयंभू। अपरिवर्तनशील से सत चित आनंद। हमारा तो मूड रोज चेंज हो रहा है, कभी कहेंगे अभी अभी कहेंगे आ बड़े आनंद में हूं, थोड़ी देर के बाद आनंद पता नहीं कहां चला गया। और परमात्मा सत चित आनंद सदाई, हमारा आनंद कभी है कभी नहीं है, और वो आनंद हम कहां ढूंढ रहे हैं बाहर भौतिकता में ढूंढ रहे, जबकि वो अंदर का गुण है और ढूंढ रहे बाहर, और इसीलिए वो टेम्पररी होता है। अच्छा सा टेस्टी खाना फेवरेट खा लिया बड़ा आनंद आ गया, अच्छी सी कोई सीन देख ली अब बड़ा आनंद आ गया, सीन चली गई आनंद चला गया, टेस्ट चला गया आनंद चला गया। तो आनंद नहीं होगा फिर। जबकि ये मेरा खुद का गुण है, कल सेवन क्वालिटीज में आपने देखा, लेकिन मेरा आनंद कभी अनुभव में है कभी नहीं क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना। लेकिन परमात्मा तो अपरिवर्तनशील है ना, इसका मतलब वो सदा आनंद में है, और ये वो आनंद में है इसीलिए उसकी आनंद में कोई व्यक्ति होता है, उसकी पहचान क्या, आनंद में जब होंगे तभी करुणा जागृत होती है कि जिस स्थिति में आनंदमय स्थिति में मैं हूं, ऐसी सभी को स्थिति का अनुभव हो उसके लिए जो जरूरी है मैं उन सबको उन बातों से अवगत कराऊं ताकि वो भी उस आनंद को अनुभव करे। वो आनंद होने से ही प्रेम जागता है तभी फिर वो शांति भी होती है। समझ में आ रही बात? तो हमारे अंदर करुणा कितनी देर के लिए जागती है, कितनी देर के लिए प्रेम जागता है, हमारे अंदर कितनी देर के लिए शांति होती है, इससे जाहिर है कि हमारा आनंद का गुण अभी मर्ज पड़ा है, इमर्ज नहीं। लेकिन परमात्मा तो सदा ही सच्चित आनंद है, हम उसके स्वरूप है, लेकिन स्वरूप होने के कारण ही जैसे कहा हम शांत स्वरूप है वो शांति का सागर है, ऐसे हम सच्चित आनंद स्वरूप हम भी है, लेकिन हमारा आज है कल नहीं है, लेकिन वो सदा है सच्चित आनंद। और जो जड़ वस्तुएं होती है वो सिर्फ सत होती है, चित आनंद नहीं। तो अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, कोई इसको कहेगा हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है सत क्या होता है चित क्या होता है, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं। सत माना जो तीनों कालों में सेम हो। हा? कल मैंने आपको कुछ और बोला, आज कुछ और बोलती हूँ, ये तो झूठ बोलती, कल कुछ और बोल रही थी आज कुछ और बोल रही। अगर तीनों दिन से हाँ ना ये बात मुझे उसने उस दिन भी कही थी, माना सच माना सच माना जिसमें परिवर्तन नहीं आता है, सच माना जो सेम रहता है, मतलब तीनों कालों में जिसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है उसको कहते हैं सत। तो आत्मा कल भी थी आज भी है कल भी रहेगी, तभी तो कहा पुनर्जन्म, तभी तो कहा कि आत्मा अपनी अगली यात्रा पर गई है तो शोक सभा करेंगे, उसको शांति का दान देंगे अगली यात्रा उसकी, तो अगली यात्रा पे जा रही है ना, शरीर खत्म हुआ है आत्मा खत्म हुई है क्या? आत्मा नहीं खत्म हुई है ना, और जब जन्म भी हो रहा था कोई आत्मा ने आके प्रवेश किया ना, किसी और घर में देहांत हुआ मतलब वो देह छोड़ के इस नए गर्भ में आई। तो आत्मा तो अमर है ना, तो ये परमात्मा भी क्या हुआ, अमर है ना वो भी। तो कहा सत्य है, सदा ही जिसका अस्तित्व है। फिर दूसरा शब्द आता है चित्त। चित्त माना क्या? चित्त माना चैतन्य। अब चैतन्य माना क्या? क्योंकि जब तक सिंप्लीफाई किया नहीं रहेगा ना, तो शब्द भले घूमेंगे पर वो अंदर में जाके इसका अर्थ क्या होता है बस पूछेगा। चैतन्य माना क्या? कॉन्शियसनेस माना क्या? बोलो। अवेयरनेस माना क्या? ज्ञान। ज्ञान। तो आज हमें ज्ञान है पर पूरा ज्ञान नहीं है, और इसीलिए ये जो इतने सवाल पूछे थे ना भगवान से, अधूरा ज्ञान है। इसीलिए पूछ रहे तू है कौन। एक तरफ तो आस्था के आधार पे परमात्मा को इधर बिठाया भी है, और दूसरी तरफ उसको पूछ रहे तू कौन है। सोचो, तो अधूरा ज्ञान है ना। तो चैतन्य माना ज्ञान की शक्ति। तो जड़ में थोड़ी है ज्ञान की शक्ति, और इसलिए चूंकि ज्ञान की शक्ति नहीं इसलिए उनको आनंद भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पर हमारे में ज्ञान की शक्ति है तो हमारे में आनंद भी है, परंतु चूंकि जितना ज्ञान खोया है तो आनंद भी तो खो दिया है। इसीलिए ज्ञान होना जरूरी है, तब जाके रियल सेंस में हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, ब्लिसफुल बना सकते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ ज्ञान अर्जित करते करते कितनी सारी हमारी मान्यताएं क्लियर हो रही है, सुनते सुनते मन को सुकून मिलता है, होता है नहीं होता है। तो क्लियर हुआ सत चित आनंद माना क्या? सत माना तीनों कालों में जो बना रहे। आत्मा तीनों कालों में बनी रहती है, अजर अमर अविनाशी इसलिए कहा गया उसको। चित्त माना चैतन्य, चैतन्य माना कितने सारे नाम आए, और सिंप्लीफाई किया तो जिसमें ज्ञान हो कि हूं कैन मैं। तो अभी तक था क्या? अभी तक जो ज्ञान था वो इसका था, मेरा का था, मैं का तो था ही नहीं। तो सच्चा ज्ञान कि हूं कौन मैं, कहां से आया हूं, तो वो उसको है, इसलिए तो हमको बता रहा है। हम तो भूल गए थे, हम तो भूल गए थे। और फिर आनंद, उसमें आनंद है, इसीलिए तो उसको करुणा जागी कि ये सब मेरे बच्चे सब कुछ भूल जाने के कारण, बैटरी का चार्ज डिस्चार्ज करने के कारण आज किस स्थिति में पहुंचे हैं। है उनके भीतर में शांति, है उनके भीतर में खुशी, है उनके भीतर में ज्ञान, लेकिन सब भुला कर बैठे हैं। तो उसको करुणा आती है, प्रेम जागृत होता है, मैं जाके इनको सब बताऊं। तो वो आया है धरती पे, और आके उसने ही ये सारा बताया है जो आपको बताया जा रहा है। तो क्लियर हुआ सत चित आनंद क्या होता है, एक एक शब्द क्लियर हुआ, और वो सब परमात्मा के दिख रहे हैं लक्षण। तो अपरिवर्तनशील से सच्चित आनंद आ गया। अब तीसरा कहा था अपरिमित। हाँ, क्यों नहीं जन्म ले रहा है? कोई वो बैटरी नहीं है, कोई वो पावर बैंक नहीं है, वो पावर हाउस है। पावर हाउस किसी के अंदर फिट नहीं, किसी डिवाइस में जा नहीं सकता है। वो अपने आप में इतना अपार है कि कोई डिवाइस उसको अपने भीतर समेट नहीं सकता है। और वो जो पावर बैंक होगा उसमें से तो जो भरा है वो यूज होके कंज्यूम होके खत्म हो जाएगा। ये तो खुद जनरेट कर रहा है और जनरेट करके सप्लाई कर रहा है। तो इस अपरिमित शब्द से क्या क्या बातें निकल के आएंगी? वो सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ माना सर्व का ज्ञान है, और सर्व का ज्ञान माना सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ शब्दों तक रह जाएंगे तो फिर प्रश्न उठते रहेंगे। सर्वज्ञ माना क्या? बोलो अभी। सबका ज्ञान, सबका ज्ञान माना क्या? तीनों काल, हमारी जीवन तीन कालों के अंदर है ना, तीन कालों के अंदर ही तो है। जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, जिसको तीनों लोकों का ज्ञान हो उसको ही तो सर्वज्ञ कहेंगे। सिर्फ इतना नहीं कि इसको फिजिक्स भी आता है, इसको केमिस्ट्री भी आता है, माने ये सर्वज्ञ है, लेकिन तीनों कालों का तो ज्ञान ही नहीं है तो उसको सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? तीनों लोकों का तो ज्ञान ही नहीं है तो उसको सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? क्लियर हुआ? सर्वज्ञ वही तो आके सारा बता रहा है कि तुम पहले ये थे, फिर तुम यात्रा करते करते बैटरी डिस्चार्ज हुई, आज ये स्थिति है, वापस चार्जिंग करो। तो तीनों कालों का ज्ञान दे रहे ना, वो तीनों लोकों का है, बस अभी इधर और रहने वाले वहां के थे, और इन दोनों के बीच में ट्रांजिटरी होता है तो उसको तीन लोक हो गए ना वो। तो तीनों लोकों का ज्ञान जिसको है, तीनों कालों का ज्ञान जिसको है, उसको कहेंगे सर्वज्ञ, अर्थात जिससे कुछ भी अज्ञात नहीं है, जिसको सब कुछ ज्ञात है, और वही आके हमको भी ज्ञात कराता है। और क्या निकलेगा अपरिमित से? क्योंकि अपरिमित किस किस बात में? ज्ञान में भी, शक्तियों में भी, और गुणों में भी। तो ज्ञान में अपरिमित है तो शब्द आया सर्वज्ञ, शक्ति में अपरिमित है तो शब्द आया सर्वशक्तिमान, अलमाइटी। दुनिया में व्यक्ति के पास जैसे कहा ज्ञान होगा, पर तीनों लोकों का नहीं होगा, तीनों कालों का नहीं होगा। ऐसी दुनिया में पोजीशन के आधार पे, धन के आधार पे कुछ कुछ शक्ति होल्डर होंगे, पर सर्वशक्तिवान होगा कोई? होगा कोई? नहीं होगा। चलो आज हम कहें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री के पास सारी शक्ति है, पर हमारे देश तक के सीमित बाउंड्री भारत की, पूरे विश्व की है क्या? पर परमात्मा तो सर्वशक्तिवान, पूरे विश्व के ऊपर है वो सर्वशक्तिमान। और तीसरा, सर्व गुणों का भंडार। आज व्यक्ति में कुछ एक गुण हो सकते हैं, पर सारे नहीं, कहीं ना कहीं एक दाग रह जाएगा, होता है नहीं होता है, पर ये सर्व गुणों की खान है। तो जो ज्ञान में भरपूर है, जो शक्तियों में भरपूर है, जो गुणों में भरपूर है, पावर हाउस है, वो सदा देगा ना। और चूंकि कहा वो सर्व का मात पिता है, तो इतनी सारी आत्माओं को उसको देना है। और माँ बाप बच्चों को सदा देते हैं कि कभी कभी देते हैं? सदा सर्वदा। और एक बच्चे को देते हैं या सब बच्चे को देते हैं? तो वो सदा सर्वदा दाता है। किसका दाता है? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। अब बता, कोई देहधारी में हो सकता है ये सब? ना वो अजन्मा, देह लिया मा नहीं, जन्म ले लिया ना, तो अजन्मा नहीं बोल सकते। देह लिया तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही, उसको अपरिवर्तनशील नहीं बोल सकते हैं। देह लिया माना कुछ लिमिटेड ही है, तो उसको अपरिमित, अनंत नहीं बोल सकते। तो क्लियर हुआ, परमात्मा किसको कहेंगे? कहा ना कसौटी, डॉक्टर किसको कहूं मैं? तो परमात्मा किसको कहेंगे जिसमें ये बातें हो, जो स्वयंभू हो, जो सर्वोच्च हो, जो सच्चित आनंद हो, जो सर्वज्ञ। और सच्चित आनंद से और एक शब्द निकल के आता है, जो सदा आनंद में होगा। देखो जितने और गुण है ना, उनका अपोजिट है, सुख है तो दुख है, प्रेम है तो नफरत है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट है? तो वो सच्चित आनंद है, मतलब सभी सापेक्षवादिता से परे है। समझ में आई बात? तो परमात्मा स्वयंभू, सच्चित आनंद, सर्व सापेक्ष बातों से परे, सर्वज्ञ, सर्व गुणों के दाता, सर्वशक्तिवान। है कोई एक इंसान जिसके पांच ये सब लागू हो रहा हो? किसी भी इंसान पे लागू नहीं होता, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो मेरे माता पिता का ना। लोग कहते मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही भगवान है या भगवान से भी भावना अच्छी है, तो क्लियर हुआ भगवान किसको कहेंगे। तो अब आते हैं फिर से, अकेले परम शब्द को पकड़कर सारी कसौटियां आ गई, उसका रूप आ गया, उसका रंग आ गया, उसका नाम। तो और एक बात रह गई जो है, अगर वो परमात्मा है, सर्व का मातृपिता है, सर्व का शिक्षक है, तो सर्व आत्माओं को वो मान्य भी होना चाहिए, सर्वमान्य भी होना चाहिए ना। भाई मैं राम को समझती हूँ मेरे भगवान है, लेकिन मेरे राम भगवान को मुस्लिम मानेगा क्या? हाँ, कोई क्रिश्चियन वो कहता है कि जीसस क्राइस्ट मेरा भगवान है, हिंदू मानेगा क्या उसको? नहीं मानेगा ना। सिख कहेगा गुरु नानक भगवान है, बौद्धी मानेगा उसको? नहीं मानेगा। तो परमात्मा तो उसको ना जो सर्वमान्य हो, जो पहले ही मैंने पूछा कि हिंदू जिसको ईश्वर कह रहा है, हिंदू जिसको भगवान कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, मुस्लिम जिसको खुदा अल्लाह कह रहा है, क्रिश्चियन जिसको गॉड कह रहा है, वो गॉड, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा एक है या अलग है? अनेक है। तो आप सबने क्या कहा? एक है। तो अगर वो एक है तो सबको मान्य होनी चाहिए ना वो बात। तो रूप भौतिक वाला देखा तो सबको मान्य नहीं है, जीसस क्राइस्ट सबको मान्य नहीं है, गुरु नानक सबको मान्य नहीं है, रामकृष्ण सबको मान्य नहीं है, कुछ पर्टिकुलर लोगों को मान्य है, लेकिन परमात्मा माना तो सबको मान्य होना चाहिए। तो कौन सा स्वरूप परमात्मा का जो सबको मान्य है? तो कहा रूप तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था ना, रूप क्या है? ज्योति स्वरूप। अब देखते हैं क्या ये रूप सभी को मान्य है, कि कसौटियां सारी सही बैठनी चाहिए ना। तो अब देख लेते हैं, परमात्मा का रूप है ज्योति स्वरूप। अब जीसस क्राइस्ट जिसको धर्म पिता कहा जाता है, वो खुद परमात्मा की ओर उंगली कहकर करता है और कहता है गॉड इज लाइट। वो खुद ही कह रहा है कि गॉड उधर है, ऐसे नहीं कह रहा है गॉड इज लाइट। आपने कभी कोई ऐसा फोटो देखा जिसमें उसकी उंगली ऐसे हो और कहे गॉड इज लाइट? वो कहता है गॉड इज लाइट। तो पहली बात तो उसने खुद ही ने बता दिया कि मैं गॉड नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मानता है तो वो उसकी भावना है, पर वो गॉड नहीं, वो खुद ही, जिसको आप गॉड मान रहे हो वो खुद ही कह रहा है, ऊपर उंगली कर रहा है, हाँ वो सन ऑफ गॉड कह रहे हैं। तो जब वो कह रहा है गॉड इज लाइट और उंगली ऊपर कर रहा है, तो बता रहा है वो इस दुनिया में नहीं, उधर कहीं है। और दूसरा कह रहा है लाइट, लाइट माना क्या होता है अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो? ज्योति हुआ ना, ज्योति तो हम पहले मान के चल गए ना, आत्मा के आधार से वो ज्योति स्वरूप। अब हम सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं कि सर्व को मान्य है कि नहीं, तो क्रिश्चियनिटी में मान्य है, क्लियर हुआ। अब सिखिज्म में आ जाइए, सिखिज्म में भी श्री गुरु नानक देव ने क्या कहा? एक ओंकार प्रकाश स्वरूपम कह दिया उसने, निराकार अजूनी सैभम, उसकी बहुत बड़ी महिमा उसने की है, उसने ही कहा अजूनी सैभम, जो योनियों में नहीं आता है, हाथ भी ऊपर और रूप भी ज्योति बता रहे, सब भी रूप ज्योति बता रहे। वही तो कहा कि सिक्खी सम में भी रूप क्या बोल रहे हैं? प्रकाश। प्रकाश और ज्योति तो एक ही है ना। अब आप चले जाइए मुस्लिम धर्म में, क्या कहते हैं भगवान के लिए? नूर ए इलाही। कौन सा नूर? अल्लाह वाला नूर। तो नूर माना क्या हो गया? लाइट। अब आइए महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया, महावीर जैन जिन्होंने जैन, उन लोगों ने भी क्या किया? ज्योति का ही साक्षात्कार किया। अगर कोई किसी के ध्यान में है तो ऊंचे से ऊंचे वाले का ध्यान कर रहे, और ध्यान किसका किया? तो बोले ज्योति का किया। कहा भी नहीं है, कहा भी नहीं अपने आप को। गुरु नानक ने तो अपने आप को दास सेवक कहा, मोहम्मद ने तो अपने आप को पैगंबर कहा, जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को सन कहा, और इन्होंने भी अपने आप को, महात्मा बुद्ध ने और महावीर जैन ने कभी भगवान नहीं कहा है। अच्छा, ये पारसियों में फायर टेम्पल होते हैं। फायर माना क्या होती है? ज्योति होती है। तो क्लैरिटी आ रही है, जो सर्वमान्य की बात थी कि भगवान माना सर्व को मान्य होना चाहिए उसका रूप। और हिंदू धर्म में आ जाइए तो हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगम। हिंदू धर्म में 2 प्रकार के मंदिर होते हैं, एक मंदिर जिनको शिवालय कहते हैं, दूसरे मंदिर जिनको देवालय कहते हैं। और प्राचीन मंदिर शिवालय है, देवालय नहीं है। प्राचीन मंदिर शिवालय है, और शिवालय माना जहां शिव बिठाया है, और शिव बिठाने के नाम पर क्या है, ज्योतिर्लिंगम बिठाया है। और क्या कहा, शिव ज्योतिर्लिंगम, कि ये लिंग किसका है, जिसका रूप ज्योति है, जिसका नाम शिव है। तब कहा सत्यम शिवम सुंदरम। यहां तक कि जब देवताओं की बात आ रही है, शंकर वो भी ध्यान कर रहा है, सामने क्या रखा है, शिव ज्योति है। अभी नवरात्रि आने वाली है, देवियों का आह्वान होने वाला है, उनको भी क्या कहते हैं, शिव शक्तियां। शिव से ही वो शक्तियां प्राप्त कर रही है। हाँ, तो सभी उस शिव परमात्मा के ज्योति स्वरूप को मान्य कर रहे हैं। तो कसौटी की सारी बातें किस पर लागू होती है, जो बिना देह का है। जो देह वाला है उस पर कसौटी की सारी बातें लागू होती नहीं है। और इसलिए डंके की चोट पर हम ये बात कह सकते हैं, परमात्मा माना ज्योति स्वरूप, और उसी को निराकार कहा गया। अब लोगों ने सिर्फ इसका अर्थ थोड़ा अलग कर दिया। निराकार का अर्थ उन्होंने बता दिया जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। अगर उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, क्यों कहते हो सुबह सुबह तो भगवान का नाम ले लो? क्यों कहते हो हे भगवान कभी तो दर्शन दे दो, भले रोज नहीं, भले घंटों भर का नहीं, कभी तो पल भर का दर्शन दे दो। तो दर्शन दे माना कोई रूप है ना उसका, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि उसका नाम रूप नहीं है? पर ये बात क्यों चली आई कि उसका नाम रूप नहीं है, क्योंकि देहधारियों का जिस प्रकार का नाम रूप है, उस प्रकार का उसका नाम रूप नहीं है। पहचान नहीं पाते हैं, है ना? तो वो वाला ऐसा वाला रूप नहीं है, 5 तत्वों वाला, लेकिन ज्योति वाला रूप है। 5 तत्वों के शरीर को जो नाम मिला है ना, वो गुणों के आधार पे, कर्तव्य के आधार पे नहीं मिला है। किसी का नाम होगा शांति, पर अशांति खूब खड़ी करती है। किसी का नाम होगा धनपत राय, लेकिन 5 पैसे नहीं है, हाथ पसारता है। हाँ नहीं, लंबा हो जाएगा। तो मतलब गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम नहीं है, फॉर आइडेंटिफिकेशन सिर्फ, कि इसको हम बुला रहे हैं। कैसे पता चला मुझे बुला रहे हैं, तो एक नाम दे दिया। लेकिन परमात्मा के नाम कैसे हैं, कर्तव्यवाचक गुणवाचक। उनके नाम या तो ईश्वर पर एंड होते, या तो नाथ पे, वैद्यनाथ, हाँ, सोमनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, या तो पाप कटेश्वर, आखिरी में या तो ईश्वर आया या तो नाथ। अब अगर सोमनाथ है माना क्या, महाकालेश्वर। अब सोमनाथ माना क्या, जो सोम रस पिलाता है, और सोम रस जिसको कहते अमर बन जाते हैं, जिससे। वैद्यनाथ माना क्या, तुम्हारे बीमारियों का नाश करता है, इलाज करने वाला। पाप कटेश्वर माना क्या, पापों से मुक्ति देने वाला। दुख हरता माना क्या, दुख हरण करने वाला। तो चाहे वो आपके पाप काटे, चाहे वो आपके दुख हरे, चाहे वो आपको सोमरस पिला के अमर बना दे, चाहे वो आपको बैद्यनाथ बनकर आपकी बीमारियां दूर करे, हर केस में वो आपका कल्याण कर रहा है। हर केस में वो कर क्या रहा है, दुख हर के भी कल्याण किया, पापों को काट के भी कल्याण किया, अमरता का रस पिला के भी कल्याण किया, बीमारियों को ठीक करके भी कल्याण किया। तो वो एक नाम जिसमें सारे नामों का सार समा जाता है वो है शिव। तभी कहा ना सत्यम शिवम सुंदरम। और चूंकि वो हमारा उसके साथ पिता का नाता है, कहा ना वो सर्व का मात पिता है, और कहते ही क्या है परम पिता। तो पिता होने के नाते उसको सिर्फ शिव नहीं बोल के शिव बाबा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। तो वो परमात्मा का अभी हमें क्या, अच्छा सत्यम शिवम सुंदरम का भी अर्थ सिंप्लीफाई करो। सत्य तो उसमें भी आ गया था तो सेम हो गया। शिव माना क्या, जो कहा ना सबका सार जिस शब्द में आ जाए वो है शिव। इसका मतलब शिव माना कल्याणकारी, शिव माना शांति, कल्याण करके शांति प्रदान कर रहा है ना। रोग में आप शांत रहते हो क्या, दुख में आप शांत रहते हो क्या, वो सब मिटा के कल्याण किया तो आपको शांति मिली ना। तो शांति का गुण है उसके पास, वो कल्याणकारी है, शांति दाता है। और बिंदी को भी शिव कहते हैं, स्वरूप भी उसमें आ गया। तो वो नाम जिसमें सब नामों का सार आ जाए वो है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदरम माना क्या बोलो, अभी सत्य हो गया, शिवम हो गया, सुंदरम माना क्या, हाँ ब्यूटी। और ब्यूटी माना क्या बोलो, ब्यूटी माना जिसमें इम्प्यूरिटी का अभाव है। आज दूध आपके पास आ जाए मिलावट वाला हो तो, आज ज्योत जलाई है उसमें थोड़ा सा भी स्मोक आ गया तो इम्प्योरिटी आ गई ना। तो इम्प्योरिटी से जो मुक्त है, जो कंप्लीट प्योर है, उसको कहते हैं सुंदर। अब देखो चेहरे की सुंदरता भी आपने जो श्रृंगार किया है उससे नहीं, अंदर से जो चमक फूट के बाहर आ रही है ना, ओज जिसको कहते हैं। एक महिला ने कुछ भी श्रृंगार नहीं धारण किया है, कपड़े भी पुराने पहने हुए, लेकिन चेहरा जो उसका चमक रहा है, आप रुक जाएंगे क्या सौंदर्य है। और एक ने खूब ब्यूटी पार्लर में जाके खूब कुछ कर लिया है, लेकिन चेहरे में चमक नाम की कोई चीज नहीं है, क्या भद्दी लग रही, चमक तो कुछ है नहीं, बस ये वो सब पहन लिया है। तो समझ में है सुंदरता किसको कहते हैं। तो परमात्मा जो है ही अपरिवर्तनशील, उसका रूप सदा सूर्य की भांति चमक रहा है। इसलिए देखो परमात्मा की महिमा में या तो सूर्य शब्द जोड़ेंगे या तो सागर। वो ज्ञान का सूर्य है, जैसे सूर्य सदा चमकता है। चंद्रमा से नहीं भेंट की उसकी, क्योंकि चंद्रमा आज अगर पूनम का चांद है कल अमावस का चांद बन जाएगा, माना परिवर्तनशील, जबकि ये तो अपरिवर्तनशील है। ऐसी उसकी भेंट सागर से की, नदी से नहीं, सरिता से नहीं। सरिता आज उफान पे है, नदी आज उफान पे है, कल बोला सूख गई है नदी, और सागर सदा ही भरा रहेगा, दे दे के भी भरा ही रहेगा, और सबको समा भी लेगा अपने आप में। तो परमात्मा हर आत्मा को समाता है और हर आत्मा को देता है, सदा सर्वदा का वो दाता है। तो कर्तव्य भी समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ गया। हमने क्या किया, से परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद किया और कुछ नहीं किया। और पहले हमारे पास आत्मा का परिचय था, और इसलिए कहा जाता है जब तक खुद का परिचय नहीं होगा खुदा का परिचय समझ नहीं पाएंगे। जब तक खुद को नहीं जानेंगे खुदा को नहीं जान सकते हैं। जब तक खुद को रियलाइज नहीं करेंगे खुदा को रियलाइज नहीं कर सकेंगे। तो नाम आ गया, रूप आ गया, गुण आ गए, प्रोफेशन ये गुण देता है, ज्ञान देता है, शक्तियां देता है। तो जिसको ही दूसरे शब्दों में कह दिया कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो इस धरा पे आता है और आकर के अधर्म का विनाश, धर्म की पुनर्स्थापना, साधु जनों का उद्धार, यही उसका कर्तव्य बताया गया है। तो वर्तमान में दिख रहा है अधर्म, अधर्म की अति दिख रही है, तो इस श्लोक के अनुसार कहां होना चाहिए उसको, कहां होना चाहिए। हाँ, और कहते हैं जब जब तब तब आता है, मतलब हमेशा नहीं रहता है, क्लियर हुआ। और जब जब तब तब आता है, मतलब कहीं से आता है, कहीं से आता है, तो कोई उसकी एड्रेस भी होगी। तो जैसे हमारे केस में भी एड्रेस होती है, प्रेजेंट क्या है, परमानेंट क्या है। तो परमानेंट वाली तो सभी उंगली ऊपर दिखा रहे हैं, सभी कोई उंगली ऊपर दिखा रहे, फिर वो चाहे धर्मात्मा कोई भी धर्म वाला हो, यहां तक कि हम आप भी, बेटा ऊपर है भगवान, तो मम्मी किधर है, वो तो आसमान दिख रहे, मम्मी भगवान, बेटा है। ईच वन इज सेइंग परमात्मा उधर है, तो वो परमानेंट एड्रेस है और वहां से आता है जब जब धर्म की ग्लानि होती है। और सिर्फ तो धर्म की ग्लानि हुई पड़ी है, तो उस अधर्म को मिटाने, धर्म को पुनर्स्थापन करने, तो कैसे, सबसे पहला काम ज्ञान देता है। पहले समझो क्यों ये अधर्म हुआ, तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, फिर क्यों तुम क्रोध कर रहे हो, तुम क्यों नफरत कर रहे हो, यही तो अधर्म है और क्या है। चूंकि अपने आप को भूल गए हो, बेखबर हो गए हो, अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हो, तो वो परमात्मा के ये अपना दिव्य कर्तव्य करता है। जैसे बच्चे को सिर्फ ज्ञान देना जरूरी नहीं होता है, वो उस ज्ञान को प्रैक्टिकल ला कर सके, उसको प्यार की पुचकार भी देनी होती है, उसको सपोर्ट देके उसको शक्ति भी देनी पड़ती है। तो वो परमात्मा तीनों ही दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, गुण भी दे रहा है, शक्तियां भी दे रहा है, जिसको ही कहते जीपीएस दे रहा है, वो स्पिरिचुअल जीपीएस। वो जीपीएस से तो फिजिकली राइट स्थान पे पहुंचोगे, लेकिन परमात्मा के इस जीपीएस से जीवन को राइट दिशा दोगे। वहां तो सिर्फ गाड़ी को राइट दिशा दे रहे हो। हाँ, वो तो कई बार हमने देखा है, गाड़ी वहीं खड़ी है जहां पहुंचना था, लेकिन वो आगे बताता है, सी आई डोंट ट्रस्ट, बट यू हैव टू ट्रस्ट जीपीएस ऑफ गॉड। उसका जीपीएस एक्यूरेट है और इसलिए उसका जीपीएस मुझे गाइड करे। जो हमने पहले दिन आपको कहा था, मौन का महत्व, वो गाइड करता है अंदर से आवाज, लेकिन हम बाहर से इतनी आवाज में होते हैं ना, वो आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। और इसीलिए हमने यहाँ पे रिट्रीट करने आए तो आपको ये भी कहा कि मौन का अभ्यास बढ़ाना, जरूरत हो उतना ही बोलना, तब जाके वो अंदर से जो आवाज आएगी ना, वो जीपीएस गाइड करेगा ना, तो आप उसी अनुसार चलोगे। लॉजिकली यू मे बी थिंकिंग कि इट इज रॉन्ग, बट अंदर से आवाज आ रही है, परमात्मा का जीपीएस कुछ मुझे मार्गदर्शन दे रहा है, और उसको अगर फॉलो करोगे आप बाद में फाइंड आउट करोगे ये ही मेरे लिए सही था, हितकारी था, कल्याणकारी था। अच्छा हुआ जो मैंने अपने लॉजिक को ध्यान नहीं दिया, जो मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज को ध्यान दिया। तो अंतरात्मा की आवाज क्या थी, वो जीपीएस भेज रहा था, वो भेज रहा था। तो परमात्मा कर्तव्य करने आए हैं, तो अब हमारा फर्ज क्या है? तो पांच बातें होगी, नाम रूप गुण क्वालिफिकेशन और एड्रेस। नाम शिव, कभी सुना सत्यम शंकरम सुंदरम, कभी सुना शंकर रात्रि, सुना? इससे क्या क्लियर होता है, शिव अलग है शंकर अलग है। शिव तो ज्योति स्वरूप है, शंकर को तो फिर भी एक बॉडी फॉर्म दिखाया है ना। तो इन सब से आज हमें इस कंक्लूजन पर पहुंचना है जो भाई साहब ने कहा था कि हम चाहे किसी को भी याद कर रहे हो परंतु हम करते तो उसको ही याद है। तो मैं एग्जाम्पल दे दूं, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है ना, लाइट का बटन वगैरह है, ये चाहे सफेद हो चाहे काला हो, चाहे सनमाइक का हो चाहे ग्लास का हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसका कनेक्शन पावर हाउस से हो तभी ये मेरे को पावर देगा। तो इस वाले को मेरा जो भी भगवान मेरे आस्था में हो, वो गणेश के रूप में हो, वो देवी के रूप में हो, हनुमान के रूप में है, वो ये वाला बोर्ड है। समझ में आ रहा है? आज तक जिस भी देहधारी को, गुरु को, व्हाटएवर मैंने भगवान का दर्जा अपनी आस्था के अनुसार दिया है, वो ये बोर्ड है, उसका भी कनेक्शन उससे होगा तो ये बोर्ड का फायदा है, अन्यथा नहीं है। तो आज दिन तक हम क्या कर रहे थे, बोर्ड से कनेक्ट हो रहे थे। अब एक स्टेप आगे बढ़ना है कि जिस बोर्ड से मैं कनेक्ट हो रहा था वो भी तो उस पावर हाउस से कनेक्ट है तभी इधर आ रहा था, अब मैं भी सीधा उसको देखते देखते उस पावर हाउस परमात्मा को देखते देखते उससे कनेक्ट हो जाऊं, ये लक्ष्य आज के इस लेसन का है। समझ में आया? ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में करना है कि भले मेरी आस्था आज दिन तक जिसके भी प्रति बनी रही, भले मैं उसको याद कर रही हूं, मेरे सामने वो आ रहा है पहले, लेकिन उसको देखते देखते ये बोर्ड किससे कनेक्टेड है, कहा ना शिव शक्तियां किससे कनेक्टेड है, शिव से। गणेश जी का पर्व गया अभी, किससे कनेक्टेड है, शिव पार्वती से, शिव से। समझ में आ रही बात? तो मैं अब इनको देखते देखते, अच्छा इनका भी पावर हाउस वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो मैं ज्योति स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को केंद्रित कर लूं, और पहले जो सारी बातें डाउट के रूप में आती थी अब नहीं आएगी, क्योंकि इतनी सारी क्लैरिटी मुझे आ गई है, तो डाउट नहीं उठेगा, मन केंद्रित हो जाएगा। मन जितना केंद्रित होगा उतना कनेक्शन पावरफुल, उतनी उसकी एनर्जी मेरी ओर फ्लो होगी। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, यहां से उधर नहीं जा सकता है, ऊपर से हायर वाला ही नीचे आएगा। तो ये दोनों काम करेगा, आपको भरेगा भी और क्या करेगा, कहा ना दिया घृत कम हो गया है तो नाम मात्र की रोशनी दे रहा है, लेकिन काली माँ भी बहुत है, तो अंदर में काली माँ भी बहुत है, नेगेटिविटी की, पापों का किचड़ा भी बहुत है। उसको जैसे सोलार को, सूर्य की किरणें सोलार प्लेट पे केंद्रित करते हैं तो हीट भी जनरेट होती है, और उस हीट के माध्यम से नीचे रखा कागज भी जल जाता है। तो हमारी बैटरी एम्पावर भी होगी, फुलफिल भी होगी, और जो कचरा है वो जल के भस्म भी होगा, तो हम हल्के भी हो जाएंगे, और सचमुच जो सच्चित आनंद की स्थिति है हम उसको अनुभव करेंगे। ये सच्चित आनंद शब्द फार्मूला अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि आप जीवन में आनंद की अनुभूति तभी कर पाएंगे जब चित्त में जो आप कह रहे थे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस जिसको हमने कहा ज्ञान, कि मुझे कौन सा ज्ञान इस समय कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो यह सच्चाई है, अगर मैं शरीर हूं तो यह सच्चाई नहीं है, असत्य है। और शरीर एक दिन चला जाएगा, तीनों कालों में टिकेगा, असत्य है। तो अगर चित्त में असत्य की स्मृति है, आनंद के अधिकारी आप हो ही नहीं, आनंद आप अनुभव कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन आनंद का अनुभव अगर सदा चाहिए, चित्त में सत्य का चिंतन हो, तो सत्य आत्मा का चिंतन, सत्य परमात्मा का चिंतन अनुभव करेंगे, आनंद ही आनंद जीवन में है। तो चाहे आत्मा का लेसन किया, चाहे परमात्मा का लेसन किया, अल्टीमेट जो कहा ना कि हमने पूछा परम माना क्या, तो कहा अल्टीमेट। सो व्हाट इज द एम, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, मेक द लाइफ ब्लिसफुल, टू मेक द लाइफ ब्लिसफुल। तो सत्य के साथ सदा जुड़े रहना तो आनंद सदा आएगा, ब्लिस हमेशा जीवन में आएगा। तो इस परमात्मा से सदा कनेक्ट रहना, जब भी भगवान को याद करूं तो कौन सामने आएगा, आस्था वाला आएगा, वर्षों से याद कर रहे ना, लेकिन वो देखते देखते समझ में आ गई ना बात, ये बोर्ड है लेकिन ये भी कनेक्टेड उससे है। तो आप फिर वहां से भी जुड़े और वहां से भी जुड़ गए, डायरेक्ट उससे जुड़ गए तो एम्पावर। तो आज के लिए इतना ही, और कनेक्शन प्रॉपरली हम कैसे कर सके वो कल फिर तीसरा सत्र होगा, ठीक है। ओम शांति। तो चलिए उस के प्रति हम अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर ले थोड़ा, अपने आप को देखें मस्तक के सिंहासन पर, एक आत्म ज्योति चमक रही है, एक प्रकाश का पुंज जिसमें से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। ये मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति, प्रकाश स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, और मुझ आत्मा के जो पिता है वो है परम पिता परमात्मा, जिस परमात्मा का पूरा परिचय आज मैंने प्राप्त किया और उसी अनुसार आज मैं अपने पिता परमात्मा की उस सत्यम शिवम सुंदरम की वो सुंदर छवि परम ज्योति के रूप में अपने सम्मुख देख रही हूं। मुझ आत्मा के पिता भी ज्योति स्वरूप है, परंतु वे परम ज्योति है, वे सर्वज्ञ है, वे सर्व गुणों के भंडार है, वे सर्व शक्तिवान है, वे स्वयंभू है, वे सत चित आनंद है। अपने पिता परमात्मा की सुंदर छवि पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुभव करें, पिता की प्रकाशमय किरणें मुझ आत्मा की तरफ आकर मुझे छू जाती हैं। उनकी करुणा मुझ पर बरस रही है, उनकी शक्तियां मुझ में भर रही है, उनके प्यार को मैं अनुभव कर रही हूँ। मेरे पिता करुणा के सागर कितने मुझ पर करुणा की धरती पर आकर मुझे जीवन के सत्यों से पुनः परिचित कराकर मुझे अपनी ब्लिसफुल स्टेज में रहने का सुंदर एक साधन दे दिया है। मैं अपने इस पिता का किन शब्दों में धन्यवाद करूं? बस अब तो शिव बाबा मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी अर्जी है, यही मेरी चाहत है कि हर पल मैं आपसे कनेक्ट रहूं और आपके जीपीएस के अनुसार जीवन में आगे बढ़ती रहूं। थैंक यू बाबा, थैंक यू शिव बाबा।